लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare e per questo ho chiesto a mio fratello di leggere la catechesi. La leggerà meglio di me.
श्रोताओ, सर्दी के कारण संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला को पढ़ने में असमर्थता जताई और इसे पियर लुजी जिरोली को पढ़ने का आग्रह किया।
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Contempliamo oggi la bellezza di Gesù Cristo, nostra speranza nel mistero della visitazione.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज हम यीशु ख्रीस्त, हमारी आशा की सुंदरता को भेंट के रहस्य में चिंतन करेंगे। कुमारी मरियम एलिजाबेथ की भेंट करती है, लेकिन यह उससे भी बढ़कर यीशु की भेंट है जो अपनी माता के गर्भ में आते हुए अपने लोगों से भेंट करते हैं, जैसे कि जकरियस अपने भजन में गाते हैं। स्वर्गदूत के आश्चर्यजनक और विस्मयकारी घोषणा के उपरांत मरियम उठती और अपनी एक यात्रा में निकल पड़ती है, जैसे कि वे सभी जिन्हें हम धर्म ग्रंथ की बुलाहट में पाते हैं, क्योंकि वे अपने बुलावे के माध्यम ही ईश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। इसराइल की यह युवा पुत्री अपने लिए दुनिया में बचाए जाने का चुनाव नहीं करती है। वह भय और दूसरे के द्वारा कहे जाने वाली बातों की परवाह नहीं करती है, बल्कि वह दूसरे लोगों के पास जाती है। जब हम प्रेम का अनुभव करते हैं तो हम एक शक्ति का अनुभव करते जो हमें आगे की ओर ले चलती है, जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, ख्रीस्त का प्रेम हमें उत्प्रेरित करता है, यह हमें आगे ले चलता है। मरियम इस प्रेम से अपने को प्रेरित पाती हैं और वह एक नारी जो अपने संबंधी है की सेवा हेतु जाती है। वह अपने में एक बुजुर्ग नारी है जो एक लंबी प्रतीक्षा के उपरांत आशातीत गर्भवती होती है, जो इस उम्र में उसके लिए कठिनाई का कारण बनती है। कुमारी मरियम एलिजाबेथ के साथ असंभव को संभव करने वाले ईश्वर पर अपना विश्वास और अपनी आशा को साझा करने जाती है, जहां ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं।
L'incontro fra le due donne produce un impatto sorprendente.
दो नारियों के मध्य मिलन में हम एक आश्चर्यजनक प्रभाव की उत्पत्ति को पाते हैं। मरियम की आवाज में कृपा से पूर्ण जो एलिजाबेथ का अभिवादन करती है, जो उस भविष्यवाणी की ओर इंगित कराता है जिसे वृद्ध नारी अपने गर्भ में वहन करती है, यह हमारे लिए उसमें दोहरी आशीष को प्रकट करता है। धन्य है तू सभी नारियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल, और एक धन्य वचन जो इस बात की ओर इंगित कराता है कि धन्य है तू जिसने उन बातों पर विश्वास किया जो ईश्वर के द्वारा कहा गया जो तुझ में पूरा होगा। अपने पुत्र के मुक्तिदायी पहचान और एक माँ के रूप में अपने प्रेरिताई को स्वीकार करते हुए मरियम अपने बारे में नहीं बल्कि ईश्वर के बारे में घोषित करती हैं और विश्वास, आशा और खुशी से भरा एक स्तुति गीत गाती हैं, जो हर रोज संध्या वंदना के दौरान कलिसिया में मरियम का भजन स्वरूप गूंजता है। मुक्तिदाता ईश्वर की यह स्तुति, जो एक नम्र हृदय सेविका से फुहारे की भांति फूट कर निकलती है, अपने में इसराइल के लिए प्रार्थना की परिपूर्णता की महान यादगारी को संक्षेपित करती है। यह धर्म ग्रंथ की प्रतिध्वनि के साथ जुड़ी हुई है। यह एक संकेत है कि मरियम गायक दल से अलग गाना नहीं चाहती, बल्कि पूर्वजों के साथ अपने स्वर मिलाना चाहती हैं। वह नम्र लोगों के प्रति अपनी करुणा को प्रकट करना चाहती हैं, उन छोटे बच्चों के प्रति जिन्हें यीशु अपनी शिक्षा में धन्य घोषित करेंगे।
La massiccia presenza del motivo pasquale fa del Magnificat anche un canto di redenzione che ha per sfondo la memoria della liberazione di Israele dall'Egitto.
मुक्ति इतिहास के सार की प्रमुख उपस्थिति मरियम के भजन को मुक्ति का एक भजन बनाता है, जिसकी पृष्ठभूमि में मिस्र से इसराइल की मुक्तिप्रद यादें हैं। यहाँ हम क्रियाओं को भूतकाल में पाते हैं, उस प्रेम की स्मृति से ओतप्रोत जो वर्तमान को विश्वास से रोशन करती है और भविष्य में आशा के दीप प्रज्वलित करती है। मरियम अतीत की कृपा का गान करती हैं, लेकिन वह वर्तमान की नारी हैं जो अपने गर्भ में भविष्य को वहन करती हैं। मरियम के भजन का पहला भाग ईश्वर के कार्यों का बखान करता है, ईश प्रजा द्वारा संहिता का पूर्णतः पालन करना। दूसरा पिता के कार्य से लेकर पुत्र के इतिहास तक, जहां हम तीन प्रमुख शब्दों स्मृति, दया, प्रतिज्ञा को पाते हैं।
Il Signore che si è chinato sulla piccola Maria per compiere in lei grandi cose e renderla madre del Signore ha iniziato a salvare il suo popolo a partire dall'esodo.
ईश्वर मरियम के माध्यम से, जो अपनी नम्रता में नतमस्तक होती हैं, अपने लोगों को निर्गमन से बचाना शुरू करते हैं। वे अब्राहम को की गई अपनी प्रतिज्ञा की याद करते हैं। ईश्वर हमारे लिए सत्य प्रतिज्ञा है, जो अपने लोगों के ऊपर प्रेम रूपी करुणा की आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी बरसाते हैं, उन पर जो उनकी संहिता के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं। और अब वे अपने पुत्र के माध्यम मुक्ति को प्रकट करते हुए उन्हें पापों से बचाने हेतु भेजते हैं। अब्राहम से लेकर यीशु ख्रिस्त और विश्वासियों का समुदाय पास्का इस भांति व्याख्यात्मक रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक मुक्ति को समझने के लिए जो समय की परिपूर्णता में मसीह द्वारा आती है, हम ईश्वर से प्रतीक्षा की कृपा मांगें, जिससे हम उनके द्वारा की गई हर प्रतिज्ञा की पूर्णता में बने रहें। हम मरियम की उपस्थिति का अपने जीवन में स्वागत करें। उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए हम इस बात को पता लगा सकें कि हर व्यक्ति जो विश्वास और आशा में बना रहता है, ईश वचनों से अपने को पोषित पाता है। इस भांति मान्यवर पियर लुइजी जिरोली ने संत पापा के आम दर्शन समारोह संदेश का अंत किया। तदपश्चात संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
Domino Vobiscum. Signum Domini Benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने संघर्षों और उनके परिणामों से प्रभावित देशों के लिए अपने विचार व्यक्त किए। संत पापा सर्दी के कारण धर्म शिक्षा का पाठ नहीं कर सके और पढ़ने का भार राज्य सचिवालय के फादर पियर लुइजी जिरोली को दिया। फिर भी संत पापा ने युद्ध से पीड़ित देशों के लिए स्वयं अपील की। पीड़ित यूक्रेन, इसराइल और फिलिस्तीन, बहुत सारे देश वहां पीड़ित हैं। हम फिलिस्तीन के विस्थापित लोगों को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पोलिश तीर्थयात्रियों को अपने अभिवादन में संत पापा ने गरीबी और हिंसा से ग्रस्त क्षेत्रों का उल्लेख किया तथा उन्हें उन पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रोत्साहित किया जो गरीब और युद्धग्रस्त देशों में अपना सेवा कार्य दे रहे हैं, विशेष रूप से यूक्रेन, मध्य पूर्व और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कई लोगों के लिए उनकी उपस्थिति इस बात का सबूत है कि ईश्वर हमेशा उन्हें याद रखते हैं। स्पानी भाषी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें आमंत्रित किया कि वे धन्य माता की तरह खुद को प्रभु के हाथों में सौंप दे, आशा बनाए रखें और उनके जीवन में ईश्वर द्वारा किए गए महान कार्यों को कृतज्ञता के साथ याद करें। आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा ने युवा लोगों, बीमारों, बुजुर्गों और नवविवाहितों को अभिवादन किया और उन्हें आशा के साथ प्रसन्न रहने, परीक्षणों में मजबूत रहने, प्रार्थना में दृढ़ रहने और अपने जरूरतमंद भाइयों एवं बहनों की मदद करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित किया। धन्य है वह व्यक्ति जिसने अपनी आशा नहीं खोई है। यह विषय संत पापा द्वारा दादा दादी एवं बुजुर्गों के 5वें विश्व दिवस के लिए चुना गया है जो इस वर्ष रविवार 27 जुलाई को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा लोकधर्मी परिवार और जीवन हेतु गठित परिषद की एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई। सिराक की पुस्तक से लिए गए ये शब्द बुजुर्गों के धन्य होने को व्यक्त करते हैं और प्रभु में रखी गई आशा में ख्रिस्तीय और सुलह किए हुए बुढ़ापे का मार्ग दर्शाते हैं। 2021 में संत पापा फ्रांसिस द्वारा स्थापित दादा दादी और बुजुर्गों का विश्व दिवस इस वर्ष आशा की जयंती पर इस बात पर चिंतन करने का एक अवसर प्रदान करता है कि किस प्रकार दादा दादी और बुजुर्गों की उपस्थिति प्रत्येक परिवार और कलीसियाई समुदाय में आशा का प्रतीक बन सकती है। इस वर्ष 30 मई से 1 जून तक परिवारों, बच्चों, दादा दादी और बुजुर्गों की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। उधर युगांडा ने कंपाला में एक नर्स की मौत के बाद अपने 8वें इबोला प्रकोप की पुष्टि की है। सरकार ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है। युगांडा इबोला वायरस की सूडानी स्ट्रेन के नए प्रकोप से जूझ रहा है, जिसकी पुष्टि 30 जनवरी को हुई थी। युगांडा स्वास्थ्य मंत्रालय के स्थायी सचिव डॉक्टर डायना एटविन ने एक बयान में कहा कि 3 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्रयोगशाला पुष्टि के बाद बुधवार 29 जनवरी को कंपाला में इबोला से एक 32 वर्षीय पुरुष नर्स की मृत्यु हो गई। कई स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सा सहायता लेने के बाद नर्स की मृत्यु कैसे हुई, इसका वर्णन करते हुए डॉक्टर एटविन ने कहा, रोगी को 5 दिनों तक तेज बुखार, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई की शिकायत थी, जो बाद में शरीर के कई हिस्सों में बिना किसी कारण के रक्तस्राव में बदल गई। रोगी के अंग काम करना बंद कर चुके थे और उनकी मृत्यु हो गई। एसोसिएट प्रेस ने बताया कि सोमवार तक 2 और लोग वायरस से प्रभावित हुए हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि युगांडा के सूडान में पाए जाने वाले इबोला के टीके की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए रोग विषयक परीक्षण शुरू कर दिया है। युगांडा की सरकार ने लोगों को इबोला के लक्षण वाले व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क से बचने की चेतावनी दी है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यदि यह शांति का एकमात्र संभव रास्ता है तो वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्ता की मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं। यह बयान एक ब्रिटिश पत्रकार को दिया गया था तथा यूक्रेनी प्रेस में भी प्रसारित किया गया। हालांकि जेलेंस्की के अनुसार वार्ता में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अभिनेताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने दोहराया कि यूक्रेन रूसियों द्वारा कब्जा किए गए किसी भी क्षेत्र को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 महीने के भीतर युद्ध विराम समझौते के लिए नवीनतम अपील के बाद आया है। व्हाइट हाउस के प्रमुख ने कहा यह खुलासा करते हुए कि वास्तव में कीव और मास्को दोनों के साथ वार्ता रचनात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। अंत में हाल के दिनों में सुर्खियों में छाए दुर्लभ मृदा मुद्दे के बारे में जेलेंस्की ने घोषणा की कि उनका देश अमेरिकी निवेश का स्वागत करने के लिए तैयार होगा। उधर पवित्र भूमि में चल रहे संघर्ष और आर्थिक कठिनाई के बावजूद बेतलहम विश्वविद्यालय शांति और लचीलेपन का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ तक कि यह फिलिस्तीनी युवाओं के बीच एकता को बढ़ावा देते हुए अपने पाठ्यक्रमों का विस्तार करने के लिए भी काम कर रहा है। ब्रदर हरनान संतोष गुंजालेस FSC, जो वर्तमान में बेतलहम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते हैं, ओसर्वातोरे रोमानो से विश्वविद्यालय की स्थिति और क्षेत्र में निरंतर तनाव के सामने इसके लचीलेपन के बारे में बातें की। बेतलहम विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारा विश्वविद्यालय वर्तमान में 3,300 से अधिक छात्रों का स्वागत करता है। हमारे आधे छात्र बेतलहम से हैं, लेकिन 40% यरूशलेम से आते हैं और 10% हेब्रोन और दक्षिणी वेस्ट बैंक के अन्य क्षेत्रों से आते हैं। हमारे लगभग 21% छात्र ख्रिस्तीय हैं। ऐसे देश में जहां ख्रिस्तीय आबादी का केवल 2% हिस्सा बनाते हैं, शेष 79% मुस्लिम हैं। उन्होंने दो बातों पर प्रकाश डाला। पहला, छात्रों के बीच सामाजिक संपर्क पूरी तरह से धार्मिक संबद्धता से अप्रभावित है, और दूसरा, मुस्लिम छात्र उत्साहपूर्वक हमारे शैक्षिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जो शांति और अहिंसा में दृढ़ता से निहित है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।